तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 13। ओ सिद्धे स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्र है, उस शास्त्र का पहला अधिकार अपना जो चल रहा है उसमें हम अभी आए हैं सूत्र क्रमांक 8 पर। देखो, यहां तो पहले ये बात बताई थी, किसी भी विषय का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का ज्ञान होना है तो पहले प्रमाण और नए से वह ज्ञान होगा, ये मुख्य बात है। और फिर अन्य 6 अप्रमुख यानी गौण बातें बताई थी जिसके माध्यम से हम वस्तु को कंफर्म यानी बराबर सही उसका यथार्थ स्वरूप जानते हैं। वो 6 बातें कौन सी, याद है भाई? हाँ, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। बहुत अच्छा, ये 6 हमने देखे तो इतने में अपना पेट नहीं भरेगा, इसलिए कह रहे हैं और एक 6 बातें बताएंगे आपको। 8 है, अच्छा 8 बातें बताएंगे। वो भी कैसे हैं कि अमुख्य उपाय है, काहे के कोई भी वस्तु को यथार्थतया जानने के, वो कौन से है आपने याद किया? दिखता है 8 नंबर बताया है। थोड़ा थोड़ा बोलो अपने को, क्या आप बोलेंगे? स्वाद, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, हाँ, अंतर रह गया, अंतर से बोला ना इसलिए सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, बोलो साहब अभी।
स्वाद, संख्या,
क्षेत्र,
स्पर्श, काल,
अल्प भाव। चलो, अभी तो ये आपने देखा भी नहीं, फिर भी इन दोनों ने याद किया है, अच्छी बात है। हम अभी इसको पढ़कर फिर अपन याद करेंगे, उसमें क्या है। हाँ, अपना तो 2-2 मिनट का काम है। हाँ बोलो साहब।
सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, कालांतर, भाव, अल्प भूत्वैश्च,
ये क्या कह रहे हैं? अर्थ देखते हैं हम के सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, ये 8 बातें जो हैं। फिर ये तो मैंने अभी संस्कृत में पढ़ा था, अभी नीचे देखते हैं। सत, आप भी रिपीट करेंगे? सत, संख्या, बोलो। मैं पहले बोलूंगा, बाद में आप रिपीट करेंगे। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, ये हमने 8 बातें देखी। पहली 2 बातें कौन सी देखी साहब? सत और संख्या। और चौथी कौन सी देखी प्रेरणा बहन? स्पर्शन। और तीसरी? हाँ, बहुत अच्छा, सबने याद किया है ना। हाँ, 4 कौन सी बातें भैया? टोटल 4 अभी तक हमने देखी, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श। आप बताएंगे जयाबेन?
संख्या,
बहुत अच्छा है। फिर से सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, अभी उल्टे स्पर्शन स्पर्शन क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने पूछा ही नहीं भाई, मैं तो सुशीला बहन से पूछना चाहता था। बहुत अच्छा, सब तैयार हो गए अभी, और अभी तो केवल चार रहेंगे, चार तो हो गए, कौन से रहेंगे भाई? बहुत अच्छा, कौन से बताएं? काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। मंदा तू बताओ। काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। हाँ बोलो सब। और पहले चार सत, देखो मत, सब भी नहीं देखना, दिमाग को स्ट्रेच आउट करो, एक दफे याद होगा भूलेंगे नहीं हम। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, ये अभी इसके अर्थ हमें मालूम नहीं।
आप
इसका अर्थ तो हम आप लोग जानते हैं, ये तो हमने बहुत बार धौला में देखा है।
धौला में तो यही कोई भी एक विषय अगर नया विषय आता है तो इनको ये सभी बातें घटित
होती। अभी ये कहते हैं इन आठ अनुयोगों के अनुयोग यानी माध्यम से यहाँ पर
अभी अलग अलग चैप्टर्स को उसके विषय को यानी अन्य आठ अपेक्षाओं से एक ही विषय का वर्णन चलेगा।
यानी जो हमने चार अनुयोग देखे ना, द्रव्य अनुयोग वगैरह, वो बात नहीं है। आठ अनुयोगों द्वारा यानी अपेक्षाओं द्वारा पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है, ऐसा बताते हैं। अब देखेंगे टीका में सत और संख्या दोनों को एक साथ लिया। यह द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से उपभेद है। यानी यहां पर हम किसको देखना चाहते हैं? द्रव्य गुण और पर्याय, इनका सत यानी उनकी सत्व यानी उनकी सत्ता हयाति विद्यमानता, उसके अपेक्षा से उपभेद है। यानी ये सब डिविजन्स हैं, सत सामान्य और संख्या विशेष। क्या कहते हैं? देखो जहां जहां सामान्य होता है वहीं विशेष रहता है। सामान्य यानी कुछ उसमें भेद किए बिना जो कुछ है। अभी हम कहेंगे विश्व, तो विश्व क्या हुआ? सामान्य। और हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे विश्व काय से बना है, तो कहेंगे छह द्रव्यों से, तो वह द्रव्य क्या हुआ? विशेष हुआ। जहां विश्व है वहीं छह द्रव्य है। ख्याल में ये तो बराबर नहीं लगेगा, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे कि जब हम द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो वहां जीव द्रव्य विशेष हो जाएगा। सामान्य में से ही विशेष की उत्पत्ति होती है। यानी कोई दोनों अलग अलग जगह पे नहीं रहते, इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण पर्यायों के सत्व की अपेक्षा इनके उपभेद बता रहे हैं। इसलिए सत को कहा सामान्य और संख्या को कहा विशेष। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र और स्पर्शन, ये काहे का उपभेद बताया उन्होंने? सत्व की अपेक्षा से उपभेद बताया। अब यहां क्षेत्र और स्पर्शन यानी यह क्षेत्र का उपभेद है, इसमें क्षेत्र सामान्य है और स्पर्शन विशेष है। ये अभी तो हम केवल पढ़ लेते हैं, जैसा आगे आगे बढ़ेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। देखो यहां हम ऐसा पूछते हैं, नारकियों का क्षेत्र कौन सा है? दिव्याबेन नारकी कहां रहते हैं? नरक में। तो अब हम आपको दूसरी तरह से पूछते हैं, वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं मध्य लोक में रहते हैं या अधोलोक में? अधोलोक में पक्का। प्रेरणा बिन बताना, अधोलोक में रहते हैं। लक्ष्मी भून, क्या बोलते हैं चलो, हमने ये पूछा नारकी कहाँ रहते हैं? तीन लोग है ना हमारे पास, अधोलोक में। अच्छा, नारकी अधोलोक में रहते हैं। चलो चलो चलो, आपने कहा नारकी अधोलोक में रहते हैं, तो देव कहाँ रहते हैं भाई? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, और कोई रह गया? हाँ, प्रेरणा बहन ने क्या बताया, तीनों लोग में रहते। बोलो अभी क्या बोलना है तुम्हारे को? देव तो ऊपर तो है ही, ऊर्ध्व लोक में ज्योतिषी है वो मध्य लोक में, और भवनवासी वेंतर है, भवनवासी जो है वो नीचे पृथ्वी के नीचे रहते पहले। इस तरह इनको क्या कहना, क्षेत्र। ये क्या कह रहे हैं? क्षेत्र और स्पर्शन। अभी स्पर्शन यानी कोई एक पर्टिकुलर जीव अनादिकाल से आज तक कहां कहां घूम के आया है, तो उसका स्पर्श किधर किधर करके आया है। स्पर्श यानी हाथ से नहीं लगाना है, वो कहां कहां हो गया है वो उसका स्पर्शन बताएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, यह क्षेत्र का उपभेद है। क्षेत्र सामान्य है और स्पर्शन विशेष है। आगे बात आएंगे, अपन थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। काल और अंतर, यह काल का उपभेद है। देखो ये क्या बताना चाहते, ख्याल में आया आपको? ये सत्व की अपेक्षा यानी यहाँ द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, इसमें आठ टुकड़े कर दिए। पहले सत संख्या, दूसरा क्षेत्र और स्पर्शन, तीसरा काल और अंतर। हाँ, अभी अंतर में क्या कहते हैं, काल यह सामान्य है और अंतर यह विशेष है। जैसा हमने आपसे पूछा, एक जीव की अपेक्षा से हम अभी देखना चाहेंगे। कोई मनुष्य होगा वो मर जावे तो दोबारा मनुष्य कम से कम कभी होगा, कितने जल्दी होगा? जघन्य अंतर क्या, एक बार मनुष्य के बाद दूसरी बार मनुष्य, और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? मैं अंतर की बात करता हूं। देखो देखो यहां क्या बता रहे, काल का उपभेद, काल सामान्य और अंतर विशेष। तो एक दफे मनुष्य पर्याय में आए तो दोबारा मनुष्य पर्याय में आने के लिए उसका जघन्य अंतर कितना होगा? अंतर मुहूर्त। अच्छा, आप
वो अंतर पूछ रहे हैं,
अंतर पूछ रहे हो,
बिना अंतर के बता रहे
हैं। जघन्य अंतर, अंतर मुहूर्त। हाँ, अभी रुकना, आपने बोलना उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? असंख्या, देखो देखो क्या बताया उन्होंने, आप नहीं समझेंगे, समझाएंगे दो मिनट के बाद। पहले हमें नक्की उत्तर तो आने दो। प्रेरणा बहन आप क्या कहती हैं? वो उसका काल रहा, मनुष्य का काल, और वो भी
किसको कहना है पहले स्पष्ट करो।
बोलो बोलो आप।
इसी गति का अंतर का मनुष्य का अंतर है, मनुष्य था वो अन्य गतियों में, अन्य तीन गतियों में चला, मनुष्य हुआ ही नहीं लंबे काल तक, तो ऐसे कितना काल चला जाएगा कि बाद में वो मैक्सिमम काल बीत जाएगा तब जाके मनुष्य होगा, तो ये पूछा गया।
यानी क्या होता है, देखो अभी हम सोचते हैं कि कोई काल बोलो तो नहीं, नहीं ये सही कह रहे हैं। एक देखो देखो, एक पुद्गल परावर्तन को अनंत काल लगता है, तो ऐसे एक दुनी दोनों असंख्यात पुद्गल परावर्तन,
ये तो एक इंद्रिय में गया, फिर कभी पंचेंद्रिय विक्रेंद्रिय वगैरह बन जाएगा, स्त्रस में आएगा, तो त्रस में आने के बाद भी उसको मनुष्य पर्याय मिलनी है ना, वो बिल्कुल नहीं निकल सकता, इसलिए मनुष्य पर्याय तो इतनी दुर्लभ है।
हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं ना, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, तो अपने को हंसी आती है, क्यों हम शाने हैं ना अधिक। अरे यहाँ तो गवर्नमेंट को चाप लगाना पड़ रहा है, क्या बोलते, चाप ही बोलते ना गुजराती में, हाँ जो भी है आप समझते हो, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ तो इतने बढ़ रहे हैं, इतने करोड़ उतने करोड़, 2020 में इतने करोड़ हो जाएंगे, 2050 में तो ऐसा हो जाएगा। अरे तुम बोलते मनुष्य पर्याय दुर्लभ, पर भाई तुझे मालूम नहीं है कि कोई जीव एकेंद्रीय पर्याय में गया, लगातार एकेंद्रीय एकेंद्रीय एकेंद्रीय, और भले ना फिर तिरंजे में घूम के मनुष्य पर्याय नहीं ले, फिर भी घूमता है। तो एक पुद्गल परावर्तन को तो अनंत काल लगता है, ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन वो एकेंद्रीय में जाता निकल, और बाद में बाय चांस मनुष्य पर्याय मिली तो वो मिली। देखो बात तो ऐसी होती है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के लिए तो मध्यम परिणाम चाहिए, और ये जीव की तो हमेशा ऐसे उठपटांग परिणाम होते हैं, अधिक मतलब गुस्से वाले तीव्र वाले या अधिक लोग शुभ परिणाम, उसमें उसको मनुष्य पर्याय मिलना भी तकलीफ होगी। तो ये अंतर जो हम देख रहे हैं, काल यानी क्या, मनुष्य काल तो कितना हो सकता है, मनुष्य के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद मनुष्य, आप कह रहे हैं आठ, आपको मालूम है भाई, नहीं मालूम, हमारे मिली बताएगा उसमें क्या है, देखा एक 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 कुछ नहीं छोड़ रहा है, पूरा बोलना भाई, नहीं तो वहां बैठे बाहर बोल देंगे फटाक से। हाँ देखो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर मनुष्य पर्याय में से मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, पहले ध्यान में रखना हो, जो मनुष्य पर्याय में से मनुष्य पर्याय को जो धारण करता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कर्म भूमि के मनुष्य की आयु कितनी है भाई, एक करोड़ पूर्व, हाँ तो अभी एक करोड़ पूर्व की आयु बांधी मनुष्य हुआ, फिर दूसरी बांधी मतलब फिर मनुष्य, ऐसा 47 करोड़ पूर्व, और जो 48वां जो होगा ना वो भोग भूमि का मनुष्य, उत्कृष्ट भोग भूमि, तीन पल्य। तो ये लगातार काल कितना, इतना लंबा, ये मनुष्य में से मनुष्य मनुष्य में, और तीरंज में से तीरंज, तीरंज में से तीरंज का काल कितना, वो आप तीरंज की बात कर रहे हो, पंचेंद्री की मनुष्य के 48 बताए ना,
लगातार की बात, लगातार की बात,
मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं पर, अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या बोलते हैं सुनो, देखो अभी आपको फुल ये जानकारी चाहिए तो मनुष्य पुरुष पर्याय की लगातार 8 मिल सकती है, बाद में स्त्री पर्याय की लगातार 8, बाद में नपुंसक पर्याय की 8, और बाद में एक अपर्याप्त मनुष्य का ही अपर्याप्त भव, 1-2 जो भी हो, 2-4, फिर बाद में फिर ऐसा करते 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 8-8-8-7, और 7 में जो आखिर का जो होगा वहां से वो इसमें जाएगा, किधर, उत्कृष्ट भोग, उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि में, तो उधर अधिक से अधिक 3 पल्ले की आयु होती है, और वहां से मरकर वो कहां जाएगा, देव में जाएगा, तो उसके मनुष्य काल जो है वो खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी जा सकते,
मनुष्य में नहीं आएगा,
आ सकता है,
अभी ऊपर के इसमें गया होगा तो आएगा,
कहीं से भी आ सकता है,
अगर वापिस वो मनुष्य में आया तो मनुष्य में आने के बाद वापिस उसका अंतर लगातार होंगे तो
हो सकता है,
होंगे ही ऐसा नहीं, हो भी सकते हैं, लेकिन लगातार मनुष्य का काल इतना है,
वही काम के
वैसे ऐसा, हाँ फिर सॉरी सॉरी,
देव में से आसे वापिस मनुष्य हुआ तो वही
48
से ही काउंटिंग करने का वापिस
हो सकते हैं,
लेकिन
उसके एक बार बताए ना तो दोबारा भी हो सकता
वैसे कितनी बार हो सकता
है
जब तक तू सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर
समय दर्शन हुआ तो भी कुछ नहीं त्रस की स्थिति 2000 सागर की हो गई तो चलो समय दृष्टि है तो भी मिथ्यात्व तो में जाएगा और एक ही दिन में चला जाएगा त्रस की स्थिति 2000 सागर की है उससे अधिक कुछ में नहीं करती।
अभी मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसके लिए केवल जिसको आता है हाथ उठाए मुंह से बात नहीं करे जैसे हमने मनुष्य पर आए इतना लंबा काल देखा मनुष्य 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 ऐसे 3 इंच गति का काल कितना होगा एक ने हाथ उठाया असंख्यात पुद्गल पर आओ। अभी मैं ऐसा पूछता हूँ नारकी का ऐसा लंबा लंबा काल कितना होगा कितना कितना ये बोलो सुशीला बहन अरे ऐसे की बात करती है इसके इसके उत्तर दे दी फटाफट। हाँ हाँ हाथ क्यों उठाया आपने मेरे दिखाई नहीं दिया देखो सुनना भैया हाँ तो आपको क्या बताना है उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 33 यानी नरक में से मरकर दोबारा नरक नहीं जाता हाँ और वैसा देव में से मरकर फिर देव नहीं होता यहाँ ऐसी बात हमें देखनी है तो ये काल एक जीव की अपेक्षा से काल। तो मेरा और एक प्रश्न है बहुत आसान है सिर्फ हाथ उठाना है बोलना किसी को नहीं है बोलने का नहीं तो कम से कम हाथ तो हिला है बहुत अच्छा सब जीवों की अपेक्षा से मनुष्य काल कितना बड़ा है अनेक जीवों की अपेक्षा से सब यानी अनेक जीवों की अपेक्षा से अभी तो हम एक जीव की अपेक्षा से देख रहे थे। मिली भाई आप बोलना अरे मिली भाई क्या कमाल है
प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा
अच्छा आप क्लियर करो सब
नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य पर्याय का काल कितना है
तो मैंने वही बताया अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत
हमेशा है यानी मनुष्य गति कभी नहीं थी पर ये ऐसा कभी नहीं
है अरे चारों गति के जीव होंगे
तो ये डार्विन की थियरी रूल आउट होती है उत्क्रांति बताते ना
वो मेंटोस खाना नहीं पड़ता है
तो उन्होंने की ये गति कोई माना केवल फिर बंदर हुआ फिर मनुष्य हुआ ऐसा कहते हैं ना।
देखो ये हम कहाँ देख रहे थे यहाँ काल और अंतर ये अंतर भी देखा और काल भी देखा इस तरह ये काल की अपेक्षा से बात उन्होंने करी है। अब कहते भाव अपेक्षा भाव यानी क्या ये भी भाव के सॉरी भाव और अल्प बहुत्व यह भाव का उपभेद है भाव सामान्य है और अल्प बहुत्व विशेष है ये जो है वो हम बाद में देखेंगे ये तो हमने उसके खाली बहुत मामूली सी पहचान कराई। अभी सत वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं
यहाँ हर जगह जो वस्तु वस्तु लिखी है ना हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उस विषय पर ये सब अनुयोग लगाना है सम्यक दर्शन की बात चल रही है तो पहले मैं सम्यक दर्शन का अस्तित्व सिद्ध करेंगे सिद्ध करें सिद्ध नहीं करना है बताना है बताना केवल स्टेटमेंट है केवल वो है जैसे देवगति की बात करें देवगति होती है बस यानी वो अस्थि रूप से उसको सिद्ध किया फिर वो देवगति के कितने जीव होते वो संख्या में बताए वो कहाँ रहते वो क्षेत्र में बताए आज तक देवगति कहाँ कहाँ मेरे रहते कहाँ है कहाँ घूमते है मारणांति करके कहाँ जाते है वो सब स्पर्शन में आएगा यानी अनादिकाल से अनंत जीवों ने अभी तक कहाँ कहाँ वो जन्म लिया है घूम लिया है कहाँ से उपाद किया है मारणांति किया है सब उसमें आ जाता है उसको स्पर्शन कहेंगे देव गति पर हम गठित करके दिखा रहे तो क्या हुआ अभी काल की बात है
यहाँ देवगति को समझने के लिए मैं बताता हूँ जैसे देवगति के जो जीव है ऊपर के स्वर्गों में वो वहाँ से नरक में जाकर उपदेश देते कि नहीं तो उनका वहाँ से वहाँ स्पर्श
होता है ना
अभी आप उपपाद वगैरह बोलेंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा
मरण अभी यहाँ से तीर्यंश मरकर उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य मरकर सलवार सीढ़ी तक जाते हैं, तो ये पूरा कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में से जीव ऊपर गया मनुष्य लोक में से, या तीर्यंश लोक में से लेना है तो बस स्वयं ब्रह्म समुद्र से भी सोलवे स्वर्ग तक गए, तो वहाँ एक भी ऐसी एरिया बाकी नहीं की जहाँ वो जी नहीं गया, तो उसको स्पर्श नहीं किया क्योंकि अनादि से लेना है ना अनंत काल तक
अनेक जीवों की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा
उसको स्पर्श किया। अब देव विहार करके तीसरे नरक तक गया तो पूरे ही एरिया त्रसनाली की ले लेना उसको, यानी ऊपर जहाँ से आते हैं छह राज्य
अभी उसमें
नीचे दो राज्य
उसमें डिटेल ऐसे है
दो राज्य नीचे ऊपर छह राज्य
अभी बात देखो मैं क्या कहता हूँ यहाँ अभी सबके सामने धवला की बात न करे तो लोगों को इंटरेस्ट रहेगा क्यों जो अब उपपाद है अरे मारणांतिक समुद्घात बताओ जो लोग समझते हैं मारणांतिक समुद्घात यानी क्या कि कोई जीव मारणांतिक समुद्घात यानी मरने के पूर्व में जहाँ उसका जन्म होना है वहाँ उस क्षेत्र तक जाता है और दो कथाएं हैं तो वहाँ उसने स्पर्श किया ऐसा समझना बात लोग को मान लो क्या अभी आपने बताया क्या कि वो स्वयंभू रमन समुद्र का एक महामत्स्य है वो तो कितना बड़ा है आप जानते हैं वो मरकर कहीं ऊपर के स्वर्ग में जाने वाला है तो उसके मानना तीन समुद्र घात होगा तो उसका इतना बड़ा पूरा प्रदेश लेके उधर जाके जो कुछ वापस आएगा तो उतने प्रदेशों में उसने स्पर्श किया ये स्पर्शन में आएगा सब क्या आएगा अभी तुम मच्छर को भी लो ना कौन नहीं बोला आपको मारनांगती तो सभी करते वायु का एक भी करेंगे कहाँ कहाँ स्पर्श कराया अनादि से उसने
स्पर्श करने का अर्थ होता है उस जीव के प्रदेश कहाँ तक एक जीव की नहीं बात
नाना जीवों के
अनादि से अनंत जीवों कहाँ कहाँ उस पर्याय वाले अभी हम देवगति की बात करें तो देव की बात सोचो अरे सम्यक दर्शन की बात करें तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न है तो पंचेंद्रियों ही संगी हो गए सम्यक दर्शन प्राप्त करके तो वो कहेंगे और वहाँ तो कितने कितने महीने लोक का कितना भाग इतने उसकी चर्चा है लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं कि संख्यात भाग में रहते हैं कि पूरे लोक में इतनी बात वहाँ चर्चा की जाती है इतनी बातों की क्षेत्र और स्पर्शन में चर्चा होती है अधिक क्षेत्र का विस्तार वहाँ नहीं किया गया यानी यहाँ समय दर्शन पर व्यक्ति करें तो समय दर्शन होता है बस ये बता दिया
फिर
उसकी संख्या समय दृष्टियों की संख्या कितनी वो बताएंगे
समय दृष्टि की संख्या कितनी
असंख्या
अच्छा अब आगे बढ़ते हैं इस तरह से हमने क्या देखा सत यानी जो वस्तु है उसकी अस्तित्व बताना और संख्या यानी यहाँ गलत लिखा है आपके यहाँ देख लेना वस्तु के परिमाणों की परिमाण या परिणाम हो गया है
परिमाण मेरे हमारे बुजुर्ग में बराबर परिमाण है
हिंदी में परिणाम लिखा है आपके पास हिंदी पुस्तक हो और गलत लिखा हो तो परिणामों की जगह परिमाणों की चाहिए प्रथम में और बाद में परिमाणों की गणना को संख्या कहते हैं यानी उनकी कितनी क्वांटिटी है परिमाण क्षेत्र वस्तु के वर्तमान कालीन निवास को क्षेत्र कहते हैं वस्तु के त्रिकालवर्ती निवास को स्पर्शन कहते हैं ये त्रिकालवर्ती यानी एक ही जीव की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ घूमे आया है इस तरह काल वस्तु स्थिर रहने की मर्यादा को काल कहते हैं ये वस्तु स्थिर यानी ये मनुष्य पर्य का जीव है क्या नाम हम कहेंगे कि नारकी है तो स्थिर रहना यानी उस पर्याय में रहना ऐसे एक जगह बैठा रहना उसकी बात नहीं है
यानी जैसे समय दर्शन के ऊपर घटित करे तो समय दर्शन कितने काल तक लगातार चालू रह सकता है कम से कम काल और अधिक से अधिक काल उसको उसका काल कहें
सम्यक दर्शन अधिक से अधिक कितना काल रह सकता है साहब? मिली भाई सम्यक दर्शन मिली भाई, मिली भाई एक जीव की अपेक्षा, बहुत अच्छा, एक जीव की अपेक्षा बोलो साहब। हाँ नलिन भाई, जया बहन तो उत्तर देने के लिए बहुत आतुर है, बोलो बहन। नहीं नहीं मैंने उत्कृष्ट पूछा, सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल हमने कोई पर्टिकुलर समय तो नहीं। हाँ साधी अनंत, अनंत काल साधी अनंत, इस तरह से अभी ये जो बात बता रहे हैं वो बताए। अब आगे ये वस्तु के स्थिर रहने की मर्यादा की मर्यादा के को है लिया है, मर्यादा को काल कहते हैं। अच्छा अब अंतर यानी वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं, यानी अभी हम सम्यक दर्शन पर घटित कर रहे हैं, अभी आपने शुरू किया है तो एक दफे सम्यक दर्शन हुआ किसी जीव को तो उसका दोबारा सम्यक दर्शन होने के लिए
छूट कर फिर दोबारा होना।
हाँ तो जघन्य अंतर कितना हो सकता है दिव्या बहन आप बताएंगे?
नहीं काल में दोबारा समय को प्राप्त कर
सकते। अरे ठहरो भैया तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, इनके बाजू में बैठे थे इतने दिन। हाँ सही आंसर दे रहे हैं। देखो देखो कोई उपशम सम्यक दृष्टि है अनाधिकालीन विचार दृष्टि भाई, और उसने समय तो प्राप्त किया और वो उपशम समय तो हो गया और वो उसमें से गिर गया, अभी सादी मिथ्या दृष्टि हुआ तो वह जीव एक अंतर्मुहूर्त में दोबारा क्षयोपशम समय तो प्राप्त करेगा, उसको एक छोटा मतलब अंतर्मुहूर्त जिसको हम कहेंगे। अब मेरा प्रश्न समझना, कोई एक उपशम समय दृष्टि है उसको दोबारा उपशम सम्यक को प्राप्त करने में कितना काल जाएगा?
मिनिमम के मैक्सिमम।
अरे मिनिमम हाँ मेरे को प्रश्न नहीं उत्तर चाहिए, वो पीछे से हाँ बोल रहे इसका सही है काय को सता रहे बोल रहे। बोलो साहब। हाँ यानी असंख्यात वर्ष, ये पल्ले पल्ले अभी इनको नहीं बोलने का, असंख्यात वर्ष लगते हैं अगर उपशम सम्यक्तु से उपशम सम्यक्तु प्राप्त करना हो तो।
उपशम सम्यक्तु का अंतर,
हाँ उसका अंतर देखना
है। उपशम सम्यक्तु से जो मिथ्यात्व में आया है और दोबारा उपशम सम्यक्तु प्राप्त करने के लिए इतना काल बीच में चला गया,
और अगर एक अंतर्मुहूर्त के बाद करेगा तो क्षयोपशम
करेगा कर सकता है,
वेदक ही हो।
अभी अंतर की बात देख रहे हैं हम, अभी बीच में नहीं बोलने का। शायिक सम्यक्तों का जघन्य अंतर कितना होगा बोलो साहब? अरे ठहरो बेला, अरे मैं अभी आपको कथा सुनाऊंगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। एक भट 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 बोले तो ब्राह्मण था, उसको चार बेटियां थी। और चारों बेटियां उपवर हुई थी, उपवर यानी शादी लायक हुई थी, ब्याह करने के लायक हुई थी। तो वो क्या देखा इनके इधर भी तो वो कोई भी आवे तो बोलने का नहीं, बिल्कुल बोलने का नहीं। क्यों? तो सभी क्या होती है आपकी भाषा में तुतलाती है, स्टैमरिंग स्टैमरिंग तोतड़ी तोतड़ी, तो वो जो भी है स्टैमर करती थी
बोलते हैं स्टैमरिंग। और बोबड़ी ने वो तो
पिता ने क्या किया, कहीं और बाहर गांव से किसी लड़के को लाए और बोला किसी को बोलने का नहीं है, उसने फुल चॉइस दिया, चार बेटियां हैं मेरी, जो तेरे को चाहिए तू शादी कर सकता है। तो वो इतना खुश हो गया भोजन वगैरह खाने से, बोलते ये वड़ा किसने क्या बोलते फ्राई किया है, तो सबसे छोटी बोली कि मीचते वही तइये, यानी मैंने वही वड़ा तला है, जो मैं मराठी में बोल रहा हूँ, बोई नको मन में बोली तो कचाया बोई, तुझको नहीं बोलने के लिए बोला था तो क्यों बोली? तो तीसरी बोली, ती बोली, ती बोली तो तू कजाए बोली, यानी वो बोली तो तू क्यों बोली? तो सबसे बड़ी बोली, मैं तो बोई भी नहीं और चाहिए भी नहीं, मैं तो बोली भी नहीं और कुछ भी नहीं किया। तो वो वैसे उड़ गया और भग गया, किसी लड़की से शादी नहीं करी। वैसे अभी हम आपसे प्रश्न पूछते हैं तो ते वे भी चाहिए मत करना। मेरे बड़े भाई जो अभी आजकल पहले यहां रहते थे किधर, वो सर्कल में शीला हाउस में, अभी वो दूसरे की जगह गए थे चुनापट्टी। वो हम छोटे थे तो हमको ऐसी बहुत कहानियां सुनाता था, उसकी आधी कहानी तो मैं अभी यहां बोलता था। यानी अभी आपको बोला है कि भाई मत बोलो, फिर भी बीच में वो ये कहते हुआ इच्छे तो। अब आगे वस्तु के विरह काल को, कौन सा साहब उन्होंने उत्तर दे दिया ना,
आप ही बता दो।
एक दफे क्षयिक सम्यक तो हुआ तो दोबारा क्षयिक सम्यक तो होने के लिए कितना अंतर होगा जघन्य? तो वही तो पूछा था भाई, वही तो पूछा था। उन्होंने क्या कहा मालूम है कि नहीं? चलो अच्छा। चलो चलो चलो, देखो भाव गुण को अथवा औपशमिक शायिक आदि पांच भावों को भाव कहते हैं। ये भाव किसको कहना, ये अपने पास जो गुण है उसको भी भाव कहेंगे। अथवा जीव की अपेक्षा से बात करते हैं तो औपशमिक शायिक आदि जो पांच भाव है उनको भी भाव कहते हैं।
सम्यक तो का प्रकरण है तो सम्यक तो कौन सा भाव है?
अल्प बहुत्व अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु की हीनता अधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। अभी यहाँ अपना जो एक पॉइंट रह गया था अनुयोग किसको कहना, तो यहाँ कहते हैं भगवान प्रणित उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया है, प्रत्येक अधिकार का नाम अनुयोग है। अगर आपको याद होगा तो हमने श्रुत ज्ञान के भेद देखे थे, ये पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास आदि, तो उसमें ये अनुयोग भी था, उसमें नहीं था, सॉरी सॉरी
सॉरी, अनुयोग अलग
है। हाँ, और ये अनुयोग यानी वो
अनुयोग
पिछुली पिछुली आदि जो पहले जो देखे थे उसमें,
ये जो है ये चैप्टर्स के
अंतर्गत। मुझे क्या बताना है, इसमें था ना
वही अनुयोग शुद्ध ज्ञान के भेदों में।
हाँ, शुद्ध ज्ञान के भेदों में अनुयोग था,
परंतु वो अनुयोग और ये अनुयोग
एक नहीं है। अच्छा,
आपने पहले बताया ना चार अनुयोग की बात, ये नहीं है।
सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकार को अनुयोग कहते हैं। तो चारों अनुयोग का सार वितरक है तो सब में दिया हुआ है
वो अनुयोग।
हाँ, चलो। हाँ,
और ये अनुयोग ने आठ अलग अलग चैप्टर्स बनाए होंगे किसी एक विषय के, उसके यहाँ अनुयोग प्रत्येक
अपना 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 अलग अलग,
जैसे सत वाला अनुयोग, संख्या वाला अनुयोग, इस तरह से हर एक का एक एक अनुयोग होगा। यानी कोई भी विषय नहीं अब समझाना है तो उसको इसी सभी अनुयोग, इसको अनुयोग द्वार के, इन अनुयोग द्वारों के द्वारा यानी इनके आधार पर हर एक बात पर ये लगाना।
अभी जो हमने पहले छह प्रकार देखे थे निर्देश स्वामित्व आदि, तो यहाँ उसके दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ कह रहे सत और निर्देश में अंतर। अभी यहाँ जो पहला सत कहा है और वहाँ पहले निर्देश कहा है, ये दोनों एक ही है या उसमें कोई डिफरेंस है? तो वो अंतर बता रहे हैं। यदि सत शब्द निर्देश है वह सामान्य कथन है और सत है वह विशेष कथन। सामान्यता सम्यक दर्शनादि के अस्तित्व को बतलाने वाला हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा, किंतु गति इंद्रिय काय योग आदि 14 मार्गनाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है, निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत और निर्देश में अंतर है। देखो अभी यहाँ ये बता रहे हैं जो आपने पहले निर्देश बताया और अभी यहाँ सत बता रहे हैं, तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, तो कहते हैं क्या है कि सत शब्द जो है हा? वह निर्देश है, वह भी निर्देश है क्योंकि कथन किया ना सत के बारे में, तो वह निर्देश है लेकिन वह सामान्य कथन है और ये सत जो है वह विशेष कथन है। और सामान्यता यानी जनरली सम्यक दर्शन आदि के अस्तित्व के अस्तित्व को बतलाने वाला हो जो कथन, तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं ना, कथन कर रहे हैं। किंतु लेकिन जो अन्य मार्गणाएं हैं गति इंद्रिय काय योग आदि 14 मार्गणा जो है, इन मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है यानी कौन सी गति में होता है, तो चारों गति में होता है। तो इंद्रिय है तो कौन से इंद्रिय वालों को होगा, तो पंचेंद्रिय को होगा, इस तरह जो कथन आएगा। तो 14 मार्गणा में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है। और निर्देश कैसा है वो सामान्य कथन करेगा तो उससे ऐसा ज्ञान नहीं होता, जो विशेष ज्ञान होता है वह सामान्य से नहीं होगा। यही यहाँ बता रहे हैं और यही सत और निर्देश में अंतर है। इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, ये जो अभी हमने 8वें नंबर का सूत्र पढ़ा तो उसमें ये सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया, अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। क्या कहना चाहते हैं अनधिकृत
ज्ञान? समझ में नहीं आया सत और निर्देश में जो उसने बताया, सत में पहले तो आपने ऐसा बताया कि सत माने खाली अस्तित्व है उतना ही, उससे ज्यादा तो कुछ बताता नहीं।
लेकिन जब निर्देश की बोलो बोलो पूरा बोलो,
और निर्देश तो खाली स्वरूप बताता है, दोनों सामान्य अपेक्षा से एक है, और अभी आप बताते हैं विशेष अपेक्षा से सत बहुत कुछ बताता है और निर्देश को थोड़ा कुछ बताता है, ऐसा ऐसा कहने का भाव मैंने ऐसा सुना, ऐसा मेरे सामने आया।
देखो यहाँ ये कह रहे हैं सिर्फ यदि सत शब्द निर्देश है यानी सत के बारे में बताया जा रहा है ना, सत है ऐसा बताया तो निर्देश हो गया ना उसका हा? तो ये कहते हैं सत शब्द निर्देश है तो वह सामान्य कथन है और सत है वह विशेष कथन। सामान्यता यानी जब सत की बात आएगी तो वह क्या है, वो विशेष कथन में जो जनरली सम्यक दर्शन आदि के अस्तित्व बताने वाला, अभी वो किस अपेक्षा से किस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है उसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो कहते विशेष कथन सामान्यता सम्यक दर्शन आदि के अस्तित्व को बतलाने वाला हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा, यानी उसको निर्देश भी कहेंगे अगर वो सामान्य बात बताने वाला होगा। किंतु अभी लेकिन ये तो सामान्य होगा तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गति इंद्रिय काय वगैरह वगैरह 14 मार्गणाओं को किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है ये बात बताएंगे और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत्य होता है।
तो संख्या में आना चाहिए
नहीं,
सत और संख्या में आपने बोला कि सत सामान्य
नहीं, ये संख्या कथन ही कर रहे हैं, सत की बात ही बता रहे हैं।
सत और निर्देश में अंतर क्या है?
ठीक
है सम्यक दर्शन होता है इतना ही बताया, निर्देश में और सत में एक इंद्रिय में होता ही नहीं है, संगी पंच इंद्रिय में होता है,
चारों गति में होता है,
संख्या में आ जाएगा ना,
नहीं संख्या में तो केवल सम्यक दृष्टि उनकी संख्या बताई जाएगी, कितने सम्यक दृष्टि औपशमी कितने हैं, क्षौपशमी कितने हैं, क्षारी कितने हैं, या अगर उसमें ये जो मार्गना की भी बात है ना, गतियों में कौन कौन से गतियों में हो सकते हैं, परंतु उसमें भी तिरंज में भी एक तो वहाँ किसको नहीं होगा किसको होगा, उसकी भी बात है
वो विशेष कथना,
यानी उसके भेद प्रभेदों की बात है। जैसे अभी अभी हमने देखा ना कल कि पांचों गुण स्थान है तिरंजों में, वहाँ शायद नहीं होगा, चौथे में हो सकती है, और वो भी कहाँ होगा, भूभूमि की तिरंज, यानी ये जो और आगे वाली बातें हैं वो सत में डिटेल्स उसको,
यानी यहाँ उनको निर्देश को सामान्य बतलाना है, दोनों ही अपेक्षा लगाई है, लेकिन जब विशेष की बात कहेंगे तो उसको सत कहेंगे। देखो इसमें ऐसा लिखते हैं, किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है, निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता है, ये बात बताना चाहते हैं, वहां डिटेल बताइए। इस सूत्र में सच शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, अनधिकृत, अनधिकृत यानी जिसकी अभी बात चल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका अधिकार चल रहा है उसकी बात नहीं, अन्य कोई बात चल रही, तो अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है, क्योंकि वो है, वो बता रहे हैं। यदि इस सूत्र में सच शब्द का प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्वों के अस्तित्व का ज्ञान निर्देश शब्द के द्वारा होता, और जीव के क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण गंध आदि तथा घटपट आदि पर्याय जिनका यह अधिकार नहीं है, ये जो अधिकार नहीं है यानी उनकी बात नहीं चल रही है, इसके इनके यानी पर्याय के अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता, इसलिए इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव में क्रोधादि तथा पुद्गल में वर्णादि का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सच शब्द का प्रयोग किया है, यानी उनको बताना है कि जो अननेसेसरली जो टॉपिक्स है वो इसमें नहीं आवे, इसके लिए इसको यूटिलाइज किया गया है,
यानी अन्य का निषेध नहीं होता,
वो है पर अभी वो कंसर्न नहीं है इतना ही,
अनधिकृत पदार्थों को ज्ञान करा भी सके
उसमें सामर्थ्य है सत में। संख्या और विधान में अंतर, ये क्या है, ये चर्चाएं जो है ना वो राजवार्तिक श्लोक वार्तिक ऐसे शास्त्रों में से उन्होंने लिए, अभी अपने को न्याय का वगैरह अभ्यास नहीं है तो ये बात थोड़ा सा हमें अटपटा लगेगा, तो ये क्या है कि इसे क्या ये सुनकर समझकर हमें क्या फायदा होने वाला है, लेकिन वो टीका में तो जो है वो उन्होंने सब जगह से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको लेते हुए यहाँ उनको बता दिया है, और है तो हम पढ़ ले हुए 100 बातें बताएं तो एक तो समझेगी कि नहीं, जो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे, हम तो ऐसा ही सोचेंगे और क्या है। संख्या और विधान में अंतर, प्रकार की प्रगणना को विधान कहते हैं, एक प्रकार की क्या है यार,
ये कितने प्रकार,
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, प्रकार की प्रगणना यानी विशेष गणना, प्रगणना यानी क्या, विशेष गणना, विधान कहते हैं, और उस भेद की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि तीन तरह की है, अवशमिक सम्यक दृष्टि, क्षाप सम्यक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये क्या हो गया, विधान हो गया, और संख्या शब्द से भेद गणना का ज्ञान होता है कि उस उक्त तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में औपशमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, क्षापशमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, भेदों के गणना की विशेषता को बतलाने का जो कारण है उसे संख्या कहते हैं। ये विधान और संख्या में
देखो सम्यक दृष्टि कितने भेद है, औपशमिक, क्षापशमिक और क्षायिक, ये विधान भी गए, अक्षम समय दृष्टि कितने हैं, क्षाई कितने हैं, वो संख्या इतनी बात
विधान शब्द में मूल पदार्थ के ही भेद ग्रहण किए हैं, यानी अभी सम्यक दर्शन की बात करें ना तो वो मूल पदार्थ है, उसके भेद तीन बताए, बस वो इसी बात है। इसलिए भेदों के अनेक तरह के भेदों को ग्रहण करने के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया है। विधान शब्द के कहने से भेद प्रभेद आ जाते हैं ऐसा माना जाए तो विशेष स्पष्टता के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया गया है ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं क्षेत्र और अधिकरण में, यानी उन्होंने पहले छह बातें बताई हैं और बाद में आठ, तो वो अलग अलग बताई है तो कोई उसमें अंतर है क्या, सेम है तो नहीं भाई उसमें फर्क है, नहीं तो पुनरुक्त हो जाएंगे, इसलिए उसके हमें विशेष पहचान बता रहे हैं। अधिकरण शब्द थोड़े स्थान को बतलाता है, इसी से वह व्याप्य है, और क्षेत्र शब्द व्यापक है। व्याप्य यानी जो व्यापा जाता है वह, नहीं व्यापक है वो जो व्यापा जाता है, और व्याप्य यानी जिसमें वो व्यापता है। क्या कहा, अधिकरण शब्द थोड़े जिसमें वो व्यापक है उसको, इसी से वह व्याप्य है, और क्षेत्र शब्द व्यापक है, वह अधिक स्थान को बतलाता है। देखो जैसा है ये आत्मा जो है उसका ज्ञान जो है वह तो अभी फिलहाल तो कम क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश है, लेकिन केवल ज्ञान होते ही क्या होगा, वह पूरे लोकाकाश में अलोकाकाश में व्यापक हो जाए। अधिकरण शब्द के कहने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, क्षेत्र के कहने से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए समस्त पदार्थों के ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है। अब कहते हैं क्षेत्र और स्पर्शन, अभी एक ही इसमें से दोनों को लिया, इसमें अंतर क्या है, तो क्षेत्र शब्द से शब्द अधिकरण से विशेषण विशेषता बतलाता है, तो भी उसका विषय एक देश का है। क्या बता रहे हैं, जो क्षेत्र शब्द है वह अधिकरण से विशेषता यानी अधिकता कुछ बतलाता है, ऐसा होते हुए भी उसका विषय यानी क्षेत्र का विषय एक देश का यानी पूर्ण में व्याप्ता नहीं है, पार्शल ही है, और स्पर्शन शब्द का सर्व देश का विषय करता है। जैसे किसी ने पूछा कि राजा कहाँ रहता है, उत्तर दिया गया कि फलाने नगर में रहता है, यहां यद्यपि राजा संपूर्ण नगर में नहीं रहता किंतु नगर के एक देश में रहता, एक देश में यानी पार्ट ऑफ इट, इसलिए नगर के एक देश में राजा का निवास होने से नगर क्षेत्र है। यानी अभी हम बहुत बार बताते हैं ना कि हम यहां से कहीं बाहर गांव जा रहे हैं फॉरेन में, तो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को देखते देखते हैं, तुम आप कहां से हैं, बोले मैं इंडिया से हूं, अरे मैं भी इंडिया में हूं, आप कहां रहते हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, ऐसा एक दूसरे को तो पहले तो अरे इतना बड़ा महाराष्ट्र है, इतना बड़ा इंडिया है, फिर आखिर आते बम्बई में, फिर बम्बई में से कहाँ साइन में, मैं भी साइन में रहता हूँ ऐसा, और फिर कहा ये फला फला बिल्डिंग 31 माले की कौन से आदर्श, तो उसके एक फ्लैट में रहता हूँ। तो वो ये बता रहे भाई के क्षेत्र जो है वो पूरे नगर को क्षेत्र कहेंगे। किसी ने पूछा कि तिल कहाँ है, उत्तर दिया कि तिल में तेल रहता है। यहाँ संपूर्ण स्थान में तेल रहने का कारण तिल तेल का स्पर्शन है, इस तरह क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर है। क्षेत्र वर्तमान काल का विषय है और स्पर्शन त्रिकाल गोचर है। ये बहुत अच्छा बताया, क्षेत्र वर्तमान काल का विषय है और स्पर्शन त्रिकाल गोचर विषय है। त्रिकाल गोचर ने तीनों काल में कहां कहां स्पर्श करके है, वो स्पर्शन तीन काल की बात बताता है और जो क्षेत्र है वो अभी वर्तमान में तो है वो उसको बताता है। वर्तमान की दृष्टि से घड़े में जल है किंतु वह त्रिकाल नहीं है। तीनों काल में जिस जगह पदार्थ की सत्ता रहती है उसे स्पर्शन कहते हैं। यह दूसरी तरह से क्षेत्र और स्पर्शन के बीच का अंतर है। अभी हम यही रुकेंगे, बाकी की बात कल देखेंगे। जावनी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्त कर सदा देखो।